प्रकरण 6 भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। जिन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बीच भक्ति का काव्य प्रवाह उमड़ा, उनका संक्षिप्त उल्लेख आरंभ में हो चुका है। यह प्रवाह राजाओं या शासकों के प्रोत्साहन आदि पर अवलंबित न था, वह जनता की प्रवृत्ति का प्रवाह था जिसका प्रवर्तक काल था। न तो उसको पुरस्कार या यश के लोभ ने उत्पन्न किया था और न भय रोक सकता था। उस प्रवाह काल के बीच अकबर ऐसे योग्य और गुणग्राही शासक का भारत के अधीश्वर के रूप में प्रतिष्ठित होना एक आकस्मिक बात थी। अतः सूर और तुलसी ऐसे भक्त कविश्वरों के प्रादुर्भाव के कारणों में अकबर द्वारा संस्थापित शांति सुख को गिनना भारी भूल है। उस शांति सुख के परिणाम स्वरूप जो साहित्य उत्पन्न हुआ वह दूसरे ढंग का था, उसका कोई एक निश्चित स्वरूप न था। सच पूछे तो वह उन कई प्रकार की रचना पद्धतियों का पुनरुत्थान था जो पठानों के शासनकाल की अशांति और विप्लव के बीच दब सी गई थी और धीरे धीरे लुप्त होने जा रही थी। पठान शासक भारतीय संस्कृति से अपने कट्टरपन के कारण दूर ही दूर रहे। अकबर की चाहे नीति कुशलता कहिए चाहे उदारता, उसने देश की परंपरागत संस्कृति में पूरा योग दिया जिससे कला के क्षेत्र में फिर से उत्साह का संचार हुआ। जो भारतीय कलावंत छोटे मोटे राजाओं के यहाँ किसी प्रकार अपना निर्वाह करते हुए संगीत को सहारा दिए हुए थे, वे अब शाही दरबार में पहुंचकर वाह वाह की ध्वनि के बीच अपना कर्तव्य दिखाने लगे। जहाँ बचे हुए हिंदू राजाओं की सभाओं में ही कविजन थोड़ा बहुत उत्साहित या पुरस्कृत किए जाते थे, वहाँ अब बादशाह के दरबार में भी उनका सम्मान होने लगा। कवियों के सम्मान के साथ साथ कविता का सम्मान भी यहाँ तक बढ़ा कि अब्दुल रहीम खान खाना ऐसे उच्च पदस्थ सरदार क्या बादशाह तक ब्रजभाषा की ऐसी कविता करने लगे। जाको जस है जगत में, जगत सराहे जाही, ताको जीवन सफल है कहत अकबर साही। साही अकबर एक समय चले कान विनोद विलोकन बालही, आहट ते अबला निरख्यो चकी चौकी चली करी आतुर चालही। त्यों बलि बेनी सुधारी धरी सुभई छबि यूं ललना अरुलालही, चंपक चारु कमान चढ़ावत काम जो हाथ लिए अहि बालही। नरहरि और गंग ऐसे सुकवि और तानसेन ऐसे गायक अकबरी दरबार की शोभा बढ़ाते थे। यह अनुकूल परिस्थिति हिंदी काव्य को अग्रसर करने में अवश्य सहायक हुई। वीर श्रृंगार और नीति की कविताओं के आविर्भाव के लिए विस्तृत क्षेत्र फिर खुल गए। जैसा आरंभ काल में दिखाया जा चुका है, फुटकल कविताएं अधिकतर इन्हीं विषयों को लेकर छप्पे कवित्त सवैयों और दोहों में हुआ करती थीं। मुक्तक रचनाओं के अतिरिक्त प्रबंध काव्य परंपरा ने भी जोर पकड़ा और अनेक अच्छे आख्यान काव्य भी इस काल में लिखे गए। खेद है कि नाटकों की रचना की ओर ध्यान नहीं गया। हृदय राम के भाषा हनुमान नाटक को नाटक नहीं कह सकते। इसी प्रकार सुप्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि व्यास जी संवत 1620 के आसपास के देव नामक एक शिष्य का रचा देव माया प्रपंच नाटक भी नाटक नहीं ज्ञान वार्ता है। इसमें संदेह नहीं कि अकबर के राजत्व काल में एक ओर तो साहित्य की चली आती हुई परंपरा को प्रोत्साहन मिला, दूसरी ओर भक्त कवियों की दिव्य वाणी का स्रोत उमड़ चला। इन दोनों की सम्मिलित विभूति से अकबर का राजत्व काल जगमगा उठा और साहित्य के इतिहास में उसका एक विशेष स्थान हुआ। जिस काल में सूर और तुलसी ऐसे भक्ति के अवतार तथा नरहरि गंग और रहीम ऐसे निपुण भावुक कवि दिखाई पड़े, उसके साहित्यिक गौरव की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक ही है। 1. छीहल। ये राजपुताने की ओर के थे। संवत 1575 में इन्होंने पंच सहेली नाम की एक छोटी पृष्ठ संख्या 109 सी पुस्तक दोहों में राजस्थानी मिली भाषा में बनाई, जो कविता की दृष्टि से अच्छी नहीं कही जा सकती। इसमें 5 साखियों की विरह वेदना का वर्णन है। दोहे इस ढंग के हैं। देख्या नगर सुहावना अधिक सुचंगा थानु, नाव चंदेरी पर गटा जनु सुरलोक समानु। ठाई ठाई सरवर पेखिय सुभर भरे निवाण, ठाई ठाई कुआं बावरी सोई हई फटिक समाण। 1575 पूनिम फागुण मास, पंच सहेली वर्णई कवि छीहल परगास। इनकी लिखी एक बावनी भी है जिसमें 52 दोहे हैं। 2. लालच दास। ये रायबरेली के एक हलवाई थे। इन्होंने संवत 1585 में हरिचरित और संवत 1587 में भागवत दशम स्कंद भाषा नाम की पुस्तक अवधि मिली भाषा में बनाई। ये दोनों पुस्तकें काव्य की दृष्टि से सामान्य श्रेणी की हैं और दोहे चौपाइयों में लिखी गई हैं। दशम स्कंद भाषा का उल्लेख हिंदुस्तानी के फ्रांसीसी विद्वान गारसा दत्तासी ने किया है और लिखा है कि उसका अनुवाद फ्रांसीसी भाषा में हुआ है। भागवत भाषा इस प्रकार की चौपाइयों में लिखी गई है। 1587 जहिया समय विलंबित बरनौ तहिया मास अषाढ़ कथा अनुसारी हरिबासर रजनी उजियारी सकल संत कह नाहवाऊ माथा बलि बलि जय हो जादव नाथा राय बरेली बरनी अवासा लालच राम नाम कह आसा। 3 कृपाराम। इनका कुछ वृत्तांत ज्ञात नहीं। इन्होंने संवत 1598 में रस रीति पर हित तरंगिणी नामक ग्रंथ दोहों में बनाया। रीति या लक्षण ग्रंथों में यह बहुत पुराना है। कवि ने कहा है कि और कवियों ने बड़े छंदों के विस्तार में श्रृंगार रस का वर्णन किया है, पर मैंने सुघरता के विचार से दोहों में वर्णन किया है। इससे जान पड़ता है कि इनके पहले और लोगों ने भी रीति ग्रंथ लिखे थे जो अब नहीं मिलते हैं। हित तरंगिणी के कई दोहे बिहारी के दोहों से मिलते जुलते हैं, पर इससे यह नहीं सिद्ध होता कि यह ग्रंथ बिहारी के पीछे का है, क्योंकि ग्रंथ में निर्माण काल बहुत स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। सिद्धि निधि शिव मुख चंद्र लखी माघ शुद्धि तृतीयासु हित तरंगिनी हो रची कवि हित परम प्रकाशु। दो में से एक बात हो सकती है, या तो बिहारी ने उन दोहों को जानबूझकर लिया अथवा वे दोहे पीछे से मिल गए। हित तरंगिनी के दोहे बहुत ही सरस भावपूर्ण तथा परिमार्जित भाषा में हैं। कुछ नमूने देखिए। लोचन चपल कटाक्ष सर अनि आरे विषपूरी मन मृग बेंध है मुनिन के जग जन सहत बिसूरी आज सवारे हो गई नंदलाल हित ताल कुमुद कुमुदनी के भटु निरखे और हाल पति आयो परदेश ते ऋतु बसंत को मानी झमक झमक निज महल में टहले करे सुरानी। 4 महापात्र नरहरि बंदी जन। इनका जन्म संवत 1562 और मृत्यु संवत 1667 में कही जाती है। महापात्र की उपाधि इन्हें अकबर के दरबार से मिली थी। ये अरुणी फतेहपुर के रहने वाले थे और अकबर के दरबार में इनका बहुत मान था। इन्होंने छप्पे और कवित्त कहे हैं। इनके बनाए दो ग्रंथ परंपरा से प्रसिद्ध हैं, रुक्मिणी मंगल और छप्पे नीति। एक तीसरा ग्रंथ कवित्त संग्रह भी खोज में मिला है। इनका वह प्रसिद्ध छप्पे नीचे दिया जाता है, जिस पर कहते हैं अकबर ने गोवध बंद कराया था। पृष्ठ संख्या 110। अरिहु दंत तिन धरे ताहि नहीं मारी सकत कोई हम संतत तिनु चरही वचन उच्चरही दीन होई अमृत पय नित स्रवही बच्छ महित हम्बन जावही हिंदु ही मधुर न देही कटक तुर कही न पियावही अह कवि नर हरि अकबर सुनो बिनवती गौ जोरे करन अपराध कौन मोही मारियत मोयह चाम सेविय चरण। 5 नरोत्तम दास। ये सीतापुर के जिले वाड़ी नामक कस्बे के रहने वाले थे। शिव सिंह सरोज में इनका संवत 1602 में वर्तमान रहना लिखा है। इनकी जाति का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। इनका सुदामा चरित ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। इसमें घर की दरिद्रता का बहुत ही सुंदर वर्णन है। यद्यपि यह छोटा है, तथापि इसकी रचना बहुत ही सरस और हृदय ग्राहिणी है और कवि की भावुकता का परिचय देती है। भाषा भी बहुत ही परिमार्जित और व्यवस्थित है। बहुतेरे कवियों के समान भर्ती के शब्द और वाक्य इसमें नहीं है। कुछ लोगों के अनुसार इन्होंने इसी प्रकार का एक और खंडकाव्य ध्रुव चरित्र भी लिखा है, पर वह कहीं देखने में नहीं आया। सुदामा चरित्र का यह सवैया बहुत लोगों के मुँह से सुनाई पड़ता है। शीश पगा न जगा तन पै प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाय उपानह को नहीं सामा द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो चकी सो वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। कृष्ण की दीन वत्सलता और करुणा का एक यह और सवैया देखिए। कैसे बिहाल बिवाइन सो भय कंटक जाल गड़े पग जोए हाय महादुख पाए सखा तुम आए इतन कितै दिन खोए देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जलसो पग धोए। 6 आलम। ये अकबर के समय के एक मुसलमान कवि थे, जिन्होंने सन 991 हिजरी अर्थात संवत 1639-40 में माधवा नल काम कंदला नाम की प्रेम कहानी दोहा चौपाई में लिखी। 5-5 चौपाइयों पर एक दोहा या सोठा है। यह श्रृंगार रस की दृष्टि से ही लिखी जान पड़ती है, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं। इसमें जो कुछ रुचिरता है वह कहानी की है, वस्तु वर्णन भाव व्यंजना आदि की नहीं। कहानी भी प्राकृत या अपभ्रंश से चली आती हुई कहानी है। कवि ने रचना काल का उल्लेख इस प्रकार किया है। दिल्लीपति अकबर सुरताना सप्तदीप में जाकी आना धर्मराज सब देश चलावा हिंद तुरक पंथ सब लावा सन 991 आही करो कथा ओ बोलो ताही। साथ महाराज टोडरमल ये कुछ दिन शेर शाह के यहाँ ऊंचे पद पर थे। पीछे अकबर के समय में भूमिकर विभाग के मंत्री हुए। इनका जन्म संवत 1550 में और मृत्यु संवत 1646 में हुई। ये कुछ दिनों तक बंगाल के सूबेदार भी थे। ये जाति के खत्री थे। इन्होंने शाही दफ्तरों में हिंदी के स्थान पर फारसी का प्रचार किया जिससे हिंदुओं का झुकाव फारसी की शिक्षा की ओर हुआ। ये प्रायः नीति संबंधी पद कहते थे। इनकी कोई पुस्तक तो नहीं मिलती, फुटकल कवित्व इधर उधर मिलते हैं। एक कवित्व नीचे दिया जाता है। जार को विचार कहा, गनिका को लाज कहा, गदहा को पान कहा, आंधरे को आरसी, निगुनी को गुण कहा, दान कहा दारिद को, पृष्ठ संख्या 111, सेवा कहा सुम की अरंडन की डारसी, मदपी को सूची कहा, साच कहा लंपट को, नीच को वचन कहा, स्यार की पुकार सी, टोडर सुकवि ऐसे हटी तो न टारे टारे, भावे कहो सूधी बात भावे कहो फारसी। 8 महाराजा बीरबल। इनकी जन्मभूमि कुछ लोग नारनौल बताते हैं और इनका नाम महेश दास। प्रयाग के किले के भीतर जो अशोक स्तंभ है उस पर यह खुदा है। संवत 1632 शाके 1493 मार्गवदी 5 सोमवार गंगादास सुत महाराज बीरबल श्री तीरथ राज प्रयाग की यात्रा सुफल लिखितम। यह लेख महाराज बीरबल के संबंध में ही जान पड़ता है क्योंकि गंगादास और महेश दास नाम मिलते जुलते हैं, जैसे कि पिता पुत्र के हुआ करते हैं। बीरबल का जो उल्लेख भूषण ने किया है उससे इनके निवास स्थान का पता चलता है। द्विज कनौज कुल कश्यपि रत्नाकर सुतधीर बसत त्रिविक्रम पुर सदा तरणी तनुजातीर वीर बीरबल से जहाँ उपजे कवि अरुभूप देव बिहारीश्वर जहाँ विश्वेश्वर तद्रूप। इनका जन्म स्थान तिकवापुर ही ठहरता है पर कुल का निश्चय नहीं होता। यह तो प्रसिद्ध ही है कि ये अकबर के मंत्रियों में थे और बड़े ही वाक चतुर और प्रत्युत्पन्न मति थे। इनके और अकबर के बीच होने वाले विनोद और चुटकुले उत्तर भारत के गांव में प्रसिद्ध हैं। महाराज बीरबल ब्रज भाषा के अच्छे कवि थे और कवियों का बड़ी उदारता के साथ सम्मान करते थे। कहते हैं केशव दास जी को इन्होंने एक बार 6 लाख रुपए दिए थे और केशव दास की पैरवी से ओरछा नरेश पर 1 करोड़ का जुर्माना माफ किया था। इनके मरने पर अकबर ने यह सोरठा कहा था, दीन देख की सब दीन एक न दीन हो दूसरा दुख सो अब हम कहा दीन कछु नहीं राख्यो बीरबल। इनकी कोई पुस्तक नहीं मिलती पर 200 कवित्वों का एक संग्रह भरतपुर में है। इनकी रचना अलंकार आदि काव्यांगों से पूर्ण और सरस होती थी। कविता में ये अपना नाम ब्रह्म रखते थे। 2 उदाहरण दिए जाते हैं, उछरी उछरी केकी झपटे उरग पर उरगहु केकिन पै लपटे लहकी हैं केकिन के सूरती हिये कि ना कछु है भय एकी करी के हरी न बोलत बहकी है कहे कवि ब्रह्मवारी हेरत हरी न फिरे बेहर बहुत बड़े जोर सो जहकी है तरनी के तावन तवासी भई भूमि रही दसहु दिशान में दवारी सी बहकी है पूत कपूत कुलच्छिन नारी लराक परोसी लजायन सारो बंध कुपुद्धि पुरोहित लंपट चाकर चोर अति धुतारो साहब सुम अड़ाग तुरंग किसान कठोर दीवान नकारो ब्रह्म भने सुनु साह अकबर 12 बांधि समुद्र में डारो। 9 गंग। ये अकबर के दरबारी कवि थे और रहीम खान खाना इन्हें बहुत मानते थे। इनके जन्म स्थान तथा कुल गोत्र आदि का ठीक वृत्त ज्ञात नहीं है। कुछ लोग इन्हें ब्राह्मण कहते हैं पर अधिकतर ये ब्रह्म भट्ट ही प्रसिद्ध हैं। ऐसा कहा जाता है कि किसी नवाब या राजा की आज्ञा से हाथी से चिरवार डाले गए, पृष्ठ संख्या 112 थे और उसी समय मरने के पहले इन्होंने यह दोहा कहा था, कबहु न भड़ुआ रन चढ़े कबहु न बाजी बम्ब सकल सभा ही प्रणाम करी विदा होत कवि गंग। इसके अतिरिक्त कई और कवियों ने भी इस बात का उल्लेख व संकेत किया है। देव कवि ने कहा है, एक भय प्रेत एक मींज मारे हाथी। ये पद्य भी इस संबंध में ध्यान देने योग्य है। सब देवन को दरबार जुर्यो तह पिंगल छंद बनाए के गायो जब काहू ते अर्थ कयो न गयो तब नारद एक प्रसंग चलायो मृत लोक में है नर एक गुनी कवि गंग को नाम सभा में बतायो सुनी चाह भई परमेश्वर को तब गंग को लेन गणेश पठायो। गंग ऐसे गुनी को गयन दसो चिराइये। इन प्रमाणों से यह घटना ठीक ठहरती है। गंग कवि बहुत निर्भीक होकर बात कहते थे। वे अपने समय के नरकाव्य करने वाले कवियों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे। दास जी ने कहा है, तुलसी गंग दुवो भय सुकविन के सरदार। कहते हैं कि रहीम खान खाना ने इन्हें एक छप्पे पर 36 लाख रुपए दे डाले थे। वह छप्पे यह है, चकित भंवरी रही गयो गम नहीं करत कमलवन, अहिफन मणि नहीं लेत तेज नहीं बहत पवन वन, हंस मानसर तज्जो चक चक्की न मिले अति, बहु सुंदरी पद्मिनी पुरुष न चहे न करे रति, खल भलती शेष कवि गंग मन कवि गंग भन, अमित तेज रविरथ खस्यो, खाना न खान बैरम सुवन, जब ही क्रोध करी तंग कस्यो। सारांश यह है कि गंग अपने समय के प्रधान कवि माने जाते थे। इनकी कोई पुस्तक अभी नहीं मिली है। पुराने संग्रह ग्रंथों में इनके बहुत से कवित्व मिलते हैं। सरल हृदय के अतिरिक्त वाग वैदग्ध भी इनमें प्रचुर मात्रा में था। वीर और श्रृंगार रस के बहुत ही रमणीक कवित्व इन्होंने कहे हैं। कुछ अन्योक्तियां भी बड़ी मार्मिक हैं। हास्य रस का पुट भी बड़ी निपुणता से ये अपनी रचना में देते थे। घोर अतिशयोक्ति पूर्ण वस्तु व्यंग पद्धति पर विरहत आपका वर्णन भी इन्होंने किया है। उस समय की रुचि को रंजित करने वाले सब गुण इनमें वर्तमान थे, इसमें कोई संदेह नहीं। इनका कविता काल विक्रम की 17वीं शताब्दी का अंत मानना चाहिए। रचना के कुछ नमूने देखिए। बैठी थी सखिन संग पिय को गवन सुन्यो, सुख के समूह में वियोग आगि भर की, गंग कहे त्रिविध सुगंध के पवन भयो, लागत ही ताके तन भई विथा जर की, प्यारी को परसी पौन गयो मानसर कह, लागत ही और गति भई मानसर की, जलचर चरे और सेवार जर इछार भयो, तल जरी गयो पंख सुख्य भूमि दर की, झुकत कृपान मैदान जे उदोत भान, एकन ते एक मान सुषमा जरद की। पृष्ठ संख्या 113। कहे कवि गंग तेरे बल को बयारी लगे, फूटी गज घटा गन घटा जो सरद की, एते मान सोनित की नदी या उमड़ चली, रही न निशानी कहू मही में गरद की, गौरी गयो गिरिपति गणपति गयो गौरी, गौरीपति गही पूछ लपकी बरद की, देखत के वृक्षन में दीरग सुभायमान, कीर चल्यो चाखी बे को प्रेम जिय जग्यो है, लाल फल देखी के जटान मंडरान लागे, देखत बटोही बहुतेरे डग मग्यो है, गंग कवि फल फूटे भुआ उधिरान लखी, सबही निराश वह के निज गृह भग्यो है, ऐसो फलहीन वृक्ष वसुधा में भयो यारो, सेमर बिसासी बहुतेरन को ठग्यो है। 10. मनोहर कवि। ये एक कछवाहे सरदार थे जो अकबर के दरबार में रहा करते थे। शिव सिंह सरोज में लिखा है कि ये फारसी और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे और फारसी कविता में अपना उपनाम तौसनी रखते थे। इन्होंने शत प्रश्नोत्तरी नाम की पुस्तक बनाई है तथा नीति और श्रृंगार रस के बहुत से फुटकल दोहे कहे हैं। इनका कविता काल संवत 1620 के आगे माना जा सकता है। इनके श्रृंगारिक दोहे मार्मिक और मधुर हैं, पर उनमें कुछ फारसीपन के छींटे मौजूद हैं। 2-4 नमूने देखिए। हिंदू बदन नरगिस नयन संबल वारे वार, उर कुंकुम कोकिल बयन जेही लखी लाजत मार, बिथुरे सुथुरे चिकने घने घने घुगवार, रसिकन को जंजीर से बाला तेरे वार, अचरज मोहि हिंद तुरक बाधी करत संग्राम, इक दीपति सो दीप यत काबा काशी धाम। 11. बलभद्र मिश्र। ये ओरछा के सनाड्य ब्राह्मण पंडित काशीनाथ के पुत्र और प्रसिद्ध कवि केशवदास के बड़े भाई थे। इनका जन्मकाल संवत 1600 के लगभग माना जा सकता है। इनका नक्षिक श्रृंगार का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें इन्होंने नायिका के अंगों का वर्णन उपमा और प्रेक्षा संदर्भ आदि अलंकारों के प्रचुर विधान द्वारा किया है। ये केशवदास जी के समकालीन या पहले के उन कवियों में थे जिनके चित्त में रीति के अनुसार काव्य रचना की प्रवृत्ति हो रही थी। कृपा राम ने जिस प्रकार रस रीति का अवलंबन कर नायिकाओं का वर्णन किया, उसी प्रकार बलभद्र नायिका के अंगों को एक स्वतंत्र विषय बनाकर चले थे। इनका रचना काल संवत 1540 के पहले माना जा सकता है। रचना इनकी बहुत प्रौढ़ और पारिमार्जित है, इससे अनुमान होता है कि नक्षिक के अतिरिक्त इन्होंने और पुस्तकें भी लिखी होंगी। संवत 1891 में गोपाल कवि बलभद्र कृत नक्षिक की एक टीका लिखी, जिसमें उन्होंने बलभद्र कृत 3 और ग्रंथों का उल्लेख किया। बलभद्री व्याकरण, हनुमान नाटक और गोवर्धन सतसई टीका। पुस्तकों की खोज में इनका दूषण विचार नाम का एक और ग्रंथ मिला है, जिसमें काव्य दोषों का निरूपण है। नक्ष के दो कवित्व उद्धृत किए जाते हैं। पाटल नयन कोक नद के से दल दो, बलभद्र बासर उनिधि लखो बाल में, शोभा के सरोवर में बाड़व की आभा केंदो, देवधुनि भारती मिली है पुण्य काल में। पृष्ठ संख्या 114। काम कैवरत केंदो नासिका उडुप बैठो, खेलत शिकार तरुणी के मुख ताल में, लोचन सीता सित में लोहित लकीर मानो, बांधे जुगमीन लाल रेशम की डोर में। मरकत के सूत केंदो पन्नग के पूत अति, राजत अभूत तम राज कैसे तार हैं, मख तूल गुण ग्राम शोभित सरस श्याम, काम मृग कानन के कुह के कुमार हैं, कोप की किरण के जलज नाल नील तंतु, उपमा अनंत चारु चमर सिंगार हैं, कारे सटकारे भिंज सोधे सो सुगंध बास, ऐसे बल भद्र नव बाला तेरे बार हैं। 12. जमाल। ये भारतीय काव्य परंपरा से पूर्ण परिचित कोई सहृदय मुसलमान कवि थे, जिनका रचना काल संवत 1627 अनुमान किया गया है। इनके नीति और श्रृंगार के दोहे राजपुताने की ओर बहुत जनप्रिय हैं। भावों की व्यंजना बहुत ही मार्मिक पर सीधे साधे ढंग पर की गई है। इनका कोई ग्रंथ तो नहीं मिलता, पर कुछ संग्रहित दोहे मिलते हैं। सहृदयता के अतिरिक्त इनमें शब्द क्रीड़ा की निपुणता भी थी, इससे इन्होंने कुछ पहेलियां भी अपने दोहों में रखी हैं। कुछ नमूने दिए जाते हैं। पूनम चांद कुसुम रंग नदी तीर दुम डाल, रेत भीत भूसली पणो एथिर नहीं जमाल, रंग जो चोल मजीठ का संत वचन प्रतिपाल, पाहण देख रुकरम गत एक में मिटे जमाल, जमला ऐसी प्रीति कर जैसी केस कराए, कै काल के उजला जब तब सिर ज्यों स्यों जाए, मनसा तो गाहक बए नैना भय दलाल, धनी बसत बेचै नहीं किस विद बने जमाल, बाल पणे धौला भया तरुण पणे भया लाल, वृद्ध पणे काला भया कारण कोण जमाल, कामिण जावक रंग रच्यो दमकत मुकता कोर, इम हंसा मोती तजे इम चुगलिए चकोर। 13. केशवदास। ये सनाड्य ब्राह्मण कृष्णदत्त के पौत्र और काशीनाथ के पुत्र थे। इनका जन्म संवत 1612 में और मृत्यु 1674 के आसपास हुई। ओरछा नरेश महाराज राम के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में ये रहते थे, जहां इनका बहुत मान था। इनके घराने में बराबर संस्कृत के अच्छे पंडित होते आए थे। इनके बड़े भाई बलभद्र मिश्र भाषा के अच्छे कवि थे। इस प्रकार की परिस्थिति में रहकर ये अपने समय के प्रधान साहित्य शास्त्र कवि माने गए। इनके आविर्भाव काल से कुछ पहले ही रस अलंकार आदि काव्यांगों के निरूपण की ओर कुछ कवियों का ध्यान जा चुका था। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि हिंदी काव्य रचना प्रचुर मात्रा में हो चुकी थी। लक्ष्य ग्रंथों के उपरांत ही लक्षण ग्रंथों का निर्माण होता है। केशवदास जी संस्कृत के पंडित थे, अतः शास्त्रीय पद्धति से साहित्य चर्चा का प्रचार भाषा में पूर्ण रूप से करने की इच्छा इनके लिए स्वाभाविक थी। केशवदास के पहले संवत 1598 में कृपा राम थोड़ा रस निरूपण कर चुके थे। इसी समय में चरखारी के मोहनलाल मिश्र ने श्रृंगार सागर नामक एक ग्रंथ श्रृंगार रस संबंधी लिखा। नरहरि के कवि के साथ अकबरी दरबार में जाने वाले करनेस कवि ने कर्णाभरण, श्रुति भूषण और भूप भूषण नामक तीन ग्रंथ पृष्ठ संख्या 115 अलंकार संबंधी लिखे थे। पर अब तक किसी कवि ने संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों का पूरा परिचय नहीं कराया था। यह काम केशवदास जी ने किया। ये काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे, जैसा कि इन्होंने स्वयं कहा है। यद्यपि सुजाति सुलच्छनी सुभ्रन सरस सुवृत्त, भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। जो अपने इसी मनोवृत्ति के अनुसार इन्होंने भामा, उद्भट और दंडी आदि प्राचीन आचार्यों का अनुसरण किया, जो रस रीति आदि सब कुछ अलंकार के अंतर्गत ही लेते थे। साहित्य शास्त्र को अधिक व्यवस्थित और समुन्नत रूप में लाने वाले मम्मट आनंद वर्धनाचार्य और विश्वनाथ का नहीं, अलंकार के सामान्य और विशेष दो भेद करके इन्होंने उसके अंतर्गत वर्णन की प्रणाली ही नहीं, वर्णन के विषय भी ले लिए हैं। अलंकार शब्द का प्रयोग इन्होंने व्यापक अर्थ में किया है। वास्तविक अलंकार इनके विशेष अलंकार ही हैं। अलंकारों के लक्षण इन्होंने दंडी के काव्यादर्श से तथा बहुत सी बातें अमर रचित काव्य कल्पलता वृत्ति और केशव मिश्र कृत अलंकार शेखर से ली है। पर केशव के 50 या 60 वर्ष पीछे हिंदी में लक्षण ग्रंथों की जो परंपरा चली वह केशव के मार्ग पर नहीं चली। काव्य के स्वरूप के संबंध में तो वह रस की प्रधानता मानने वाले काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण के पक्ष पर रही और अलंकारों के निरूपण में उसने अधिकतर चंद्रालोक और कुवलयानंद का अनुसरण किया। इसी से केशव के अलंकार लक्षण हिंदी में प्रचलित अलंकार लक्षणों से नहीं मिलते। केशव ने अलंकारों पर कवि प्रिया और रस पर रसिक प्रिया लिखी। इन ग्रंथों में केशव का अपना विवेचन कहीं नहीं दिखाई पड़ता। सारी सामग्री कई संस्कृत ग्रंथों से ली हुई मिलती है। नामों में अवश्य कहीं कहीं थोड़ा हेर फेर मिलता है, जिससे गड़बड़ी के सिवा और कुछ नहीं हुआ है। उपमा के जो 22 भेद केशव ने रखे हैं उनमें से 15 तो ज्यों के त्यों दंडी के हैं, 5 केवल नाम भर बदल दिए गए हैं। शेष रहे 2 भेद संकीर्ण उपमा और विपरीत उपमा। इनमें विपरीत उपमा को तो उपमा कहना ही व्यर्थ है। इसी प्रकार आक्षेप के जो 9 भेद केशव ने रखे हैं उनमें 4 तो ज्यों के त्यों दंडी के हैं, 5वां मरणाक्षेप दंडी का मूर्छाक्षेप ही है। कवि प्रिया का प्रेमालंकार दंडी के प्रेयस का ही नामांतर है। उत्तर अलंकार के 4 भेद वास्तव में पहेलियां हैं। कुछ भेदों को दंडी से लेकर भी केशव ने उनका और का और ही अर्थ समझा है। केशव के रचे 7 ग्रंथ मिलते हैं, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन भावनी और जहांगीर जस चंद्रिका। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। अपनी रचनाओं में उन्होंने अनेक संस्कृत काव्यों की उक्तियां लेकर भरी हैं, पर उन उक्तियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में उनकी भाषा बहुत कम समर्थ हुई है। पदों और वाक्यों की न्यूनता, अशक्त फालतू शब्दों के प्रयोग और संबंध के अभाव आदि के कारण भी अप्रांजल और उबड़ खाबड़ हो गई है और तात्पर्य भी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो सका है। केशव की कविता जो कठिन कही जाती है उसका प्रधान कारण उनकी यह त्रुटि है, उनकी मौलिक भावनाओं की गंभीरता या जटिलता नहीं। रामचंद्रिका में प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादंबरी और नैषत की बहुत सी उक्तियों का अनुवाद करके रख दिया गया है। कहीं कहीं अनुवाद अच्छा न होने के कारण उक्ति विकृत हो गई है। जैसे प्रसन्न राघव के प्रियतम पदय रंकिता भूमि भागान का अनुवाद प्यो पद पंकज ऊपर करके केशव ने उक्ति को एकदम बिगाड़ डाला है। हाँ, जिन उक्तियों में जटिलता नहीं है, समाज शैली का आश्रय नहीं लिया गया है, उनके अनुवाद में कहीं कहीं बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। जैसे भरत के प्रश्न और कैकेयी के उत्तर में पृष्ठ संख्या 116, माँ तू कहाँ नृपतात गए सुरलोक ही क्यों सुत शोक गए, जो कि हनुमान नाटक के एक श्लोक का अनुवाद है। केशव ने 2 प्रबंध काव्य लिखे, एक वीर सिंह देवचरित, दूसरा रामचंद्रिका। पहला तो काव्य ही नहीं कहा जा सकता, इसमें वीर सिंह देव का चरित्र तो थोड़ा है, दान लोभ आदि के संवाद भरे हैं। रामचंद्रिका अवश्य एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, पर यह समझ रखना चाहिए कि केशव केवल उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अतः वे मुक्तक रचना के ही उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं। प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी न थी। प्रबंध काव्य के लिए 3 बातें अनिवार्य हैं, पहला संबंध निर्वाह, दूसरा कथा की गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान और तीसरा दृश्यों की स्थानगत विशेषता। संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में न थी, उनकी रामचंद्रिका अलग अलग लिखे हुए वर्णनों का संग्रह सी जान पड़ती है। कथा का चलता प्रवाह न रख सकने के कारण ही उन्हें बोलने वाले पात्रों के नाम नाटकों के अनुकरण पर पद्यों से अलग सूचित करने पड़े हैं। दूसरी बात भी केशव में कम पाई जाती है, रामायण की कथा का केशव के हृदय पर कोई विशेष प्रभाव रहा हो यह बात नहीं पाई जाती। उन्हें एक बड़ा प्रबंध काव्य भी लिखने की इच्छा हुई और उन्होंने उसके लिए राम की कथा ले ली। उस कथा के भीतर जो मार्मिक स्थल हैं उनकी ओर केशव का ध्यान बहुत कम गया है। वे ऐसे स्थलों को या तो छोड़ गए हैं या यूं ही इतिवृत्त मात्र कहकर चलता कर दिया है। राम आदि को वन की ओर जाते देख मार्ग में पड़ने वाले लोगों से कुछ कहलाया भी तो यह कि किंधो मुनि शाप हत, किंधो ब्रह्म दोष रत, किंधो को ठग हो। ऐसा अलौकिक सौंदर्य और सौम्य आकृति सामने पाकर सहानुभूतिपूर्ण शुद्ध सात्विक भावों का उदय होता है। इसका अनुभव शायद एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने वाले नीति कुशल दरबारियों के बीच रहकर केशव के लिए कठिन था। दृश्यों की स्थानगत विशेषता लोकल कलर केशव की रचनाओं में ढूंढना तो व्यर्थ ही है। पहली बात तो यह है कि केशव के लिए प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षण नहीं था, वे उनकी देशगत विशेषताओं का निरीक्षण करने क्यों जाते। दूसरी बात यह है कि केशव के बहुत पहले से ही इसकी परंपरा एक प्रकार से उठ चुकी थी। कालिदास के दृश्य वर्णनों में देशगत विशेषताओं का जो रंग पाया जाता है वह भवभूति तक तो कुछ रहा उसके पीछे नहीं, फिर तो वर्णन रूढ़ हो गए। चारों ओर फैली हुई प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। अपनी इस मनोवृत्ति का आभास उन्होंने यह कहकर कि देखे मुख भावे अन देखे ही कमल चंद ताते मुख मुखे सखी कमल न चंदरी साफ दे दिया है। ऐसे व्यक्ति से प्राकृतिक दृश्यों के सच्चे वर्णन की भला क्या आशा की जा सकती है। पंचवटी और प्रवर्षण गिरी ऐसे रमणीय स्थलों में शब्द साम्य के आधार पर श्लेष के एक भद्दे खिलवाड़ के अतिरिक्त और कुछ न मिलेगा। केवल शब्द साम्य के सहारे जो उपमान लाए गए हैं वे किसी रमणीय दृश्य से उत्पन्न सौंदर्य की अनुभूति के सर्वथा विरुद्ध या बेमेल हैं, जैसे प्रलय काल, पांडव, सुग्रीव, शेषनाग। सादृश्य या साधर्म की दृष्टि से दृश्य वर्णन में जो उपमाएं, उत्प्रेक्षाएं आदि लाई गई हैं वे भी सौंदर्य की भावना में वृद्धि करने के स्थान पर कुतूहल मात्र उत्पन्न करती हैं। जैसे श्वेत कमल के छत्ते पर बैठे हुए भौरे पर यह उक्ति केशव केशव राय मनो कमलासन के सिर ऊपरे सो है पर कहीं कहीं रमणीय और उपयुक्त उपमान भी मिलते हैं, जैसे जनकपुर के सूर्योदय वर्णन में जिसमें कापालिक काल को छोड़कर और सब उपमान रमणीय हैं। सारांश यह कि प्रबंध काव्य रचना के योग्य न तो केशव में अनुभूति ही थी न शक्ति। परंपरा से चले आते हुए कुछ नियत विषयों के जैसे युद्ध, सेना की तैयारी, उपवन, राजदरबार के ठाट बाट तथा श्रृंगार और वीर रस फुटकल पद वर्णन ही अलंकारों की भरमार के साथ वे करना जानते थे। इसी से पृष्ठ संख्या 117 बहुत से वर्णन यों ही बिना अवसर का विचार किए वे भरते गए हैं। वे वर्णन वर्णन के लिए करते थे न कि प्रसंग या अवसर की अपेक्षा से। कहीं कहीं तो उन्होंने उचित अनुचित की भी परवाह नहीं की है, जैसे भरत की चित्रकूट यात्रा के प्रसंग में सेना की तैयारी और तड़क भड़क का वर्णन। अनेक प्रकार के रूखे सूखे उपदेश भी बीच बीच में रखना वे नहीं भूलते थे। दान महिमा लोभ निंदा के लिए तो वे प्रायः जगह निकाल लिया करते थे। उपदेशों का समावेश दो एक जगह तो पात्र का बिना विचार किए अत्यंत अनुचित और भद्दे रूप में किया गया है, जैसे वन जाते समय राम का अपनी माता कौशल्या को पातिव्रत का उपदेश। रामचंद्रिका के लंबे चौड़े वर्णनों को देखने से स्पष्ट लक्षित होता है कि केशव की दृष्टि जीवन के गंभीर और मार्मिक पक्ष पर न थी। उनका मन रात्रि ठाट बाट तैयारी, नगरों की सजावट, चहल पहल आदि के वर्णन में ही विशेषता लगता है। केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है अलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति, जिसके कारण न तो भावों की प्रकृत व्यंजना के लिए जगह बसती है न सच्चे हृदय ग्राही वस्तु वर्णन के लिए। पट दोष, वाक्य दोष आदि तो बिना प्रयास जगह जगह मिल सकते हैं। कहीं कहीं उपमान भी बहुत हीन और बेमेल है, जैसे राम की वियोग दशा के वर्णन में यह वाक्य बासर की संपत्ति उलूक ज्योन चित्तवत। रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता हुई है संवादों में। इन संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है, जैसे लक्ष्मण राम, परशुराम संवाद तथा लवकुश के प्रसंग के संवाद तथा वाक्पटुता और राजनीति के दांव पेचों का आभास भी प्रभावपूर्ण है। उनका रावण अंगद तुलसी के संवाद से कहीं अधिक उपयुक्त और संप्रयुक्त है, सुंदर है। रामचंद्रिका और कवि प्रिया दोनों का रचना काल कवि ने 1658 दिया है, केवल मास में अंतर है। रसिक प्रिया संवत 1648 की रचना प्रौढ़ है, उदाहरणों में चतुराई और कल्पना से काम लिया गया है और पद विन्यास भी अच्छे हैं। इन उदाहरणों में वाग वैदग्ध के साथ साथ सरसता भी बहुत कुछ पाई जाती है। विज्ञान गीता संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के ढंग की पुस्तक है। रतन भावनी में इंद्रजीत के बड़े भाई रत्न सिंह की वीरता का छप्पयों में अच्छा वर्णन है। यह वीर रस का अच्छा काव्य है। केशव की रचना में सूर, तुलसी आदि किसी सरसता और तन्मयता चाहे न हो पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला। कहते हैं वे रसिक जीव थे, एक दिन बुड्ढे होने पर किसी कुएं पर बैठे थे। वहां स्त्रियों ने बाबा कहकर संबोधन किया, इस पर इनके मुंह से यह दोहा निकला, केशव केसनी अस करी बैरेहु जस न कराही चंद्र बदन मृग लोचनी बाबा कही कही जाही। केशवदास की रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। जो हो कहो रहिए तो प्रभुता प्रगट होती, चलन कहो तो हित हानि नाही सहनो, भावे सो करहु तो उदास भाव प्राणनाथ, साथ ले चलहु कैसे लोक लाज बहनो। केशव दास की सौ तुम सुनहो छबीले लाल, चले ही बनत जो पे नाही आज रहनो, जैसी ये सिखाओ सिख तुम ही सुजान प्रिय, तुम ही चलत मोहि जैसो कछु कहनो। पृष्ठ संख्या 118। चंचल न हुजे नाथ अंचल न खैची हाथ, सोवे ने कसारी काउ सुकतो सोवायो जू, मंद्र करो दीप दूति चंद्र मुख देखियत, दारी के दुराय आओ द्वार तो दिखायो जू, मृगज मराल बाल बाहिर बिडारी देऊ, भायो तुम्हें केशव से मोह मन भायो जू, छल के निवास ऐसे बचन विलास सुनी, सौ गुण सूरत होते श्याम सुख पायो जू। कैठब सो नरकासु कैटभ सो नरकासुर सो पलमे मधुसो मुरसो जिन मार्यो, लोक चतुर्दश रक्षक केशव पूरन वेद पुराण विचार्यो, श्री कमला कुच कुंकुम मंडन पंडित देव अदेव निहार्यो, सोकर मांगन को बलिपै करतार हुने करतार पसार्यो। रामचंद्रिका से अरुण गात अति प्रात पद्मिनी प्राणनाथ भय, मानहु केशव दास कोक नद कोक प्रेममय, परिपूरन सिंदूरपुर कैंधो मंगल घट, किंधो शक्र को छत्र मण्यो मानिक मयूखपट, कै सोनित कलित कपाल अखिल कापालिक काल को, यह ललित लाल कैंधो लसत दिग्भामिनी के भाल को, विधि के समान है विमानकृत राजहंस, विविध विबुध युत मेरु सो अचल है, दीपति दीपति अति सातो दीप देखियत, दूसरो दिलीप सो सुदक्षिणा को बल है, सागर उजागर सो बहु बाहिनी को पति, छनदान प्रिय केंद्र सूरज अमल है, सब विधि समरत राजे राजा दशरथ, भगीरथ पथ गामी गंगा कैसो जल है, मूलन ही कि जहाँ अधोगति केशव गाय, होम हुतासन धूम नगर एक है मलिनाय, दुर्गति दुर्गन ही जो कुटिल गति सरितन ही में, श्रीफल को अभिलाष प्रकट कविकुल के जी में, कुंतल ललित नील भ्रकुटी धनुष नैन, कुमुद कटाक्ष बाण सबल सदाई है, सुग्रीव सहित तार अंगदादि भूषणन, मध्य देश केसरी के जग गति भाई है, विग्रहानुकूल सब लच्छ लच्छ रिच्छ बल, रिच्छ राज मुखी मुख केशव दास गाई है, रामचंद्र जू की चमु राम श्री विभीषण की, रावण की मीचु दर कूच चली आई है। पृष्ठ संख्या 119। पढ़ो विरंची मौन वेद जीव सोर छंडीरे, कुबेर बेर कह कही न जच्छ भीर मंडीरे, दिनेश जाई दूरी बैठु नारदादि संग ही, न बोलु चंद मंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं। 14 होल राय। ये ब्रह्म भट्ट अकबर के समय में हरिवंश राय के आश्रित थे और कभी कभी शाही दरबार में भी जाया करते थे। इन्होंने अकबर से कुछ जमीन पाई थी जिसमें होलपुर गांव बसाया था। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास ने इन्हें अपना लोटा दिया था जिस पर इन्होंने कहा था, लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल। गोस्वामी जी ने चट उत्तर दिया, मोल तोल कछु है नहीं, लेहु राय कवि होल। रचना इनकी पुष्ट होती थी पर जान पड़ता है कि ये केवल राजाओं और रईसों की विरुद्धावली वर्णन किया करते थे जिसमें जनता के लिए ऐसा कोई विशेष आकर्षण नहीं था कि इनकी रचना सुरक्षित रहती। अकबर बादशाह की प्रशंसा में इन्होंने यह कवित्व लिखा है, दिल्ली तेन तख्त वह वखत ना मुखल कैसरे, वह ना नगर बढ़ी आगरा नगर ते, गंग तेना न गुनी तान सेन तेना तान बाज, मान तेना राजा और न दाता वीर बर ते, खान खान खाना तेन नर नर हरि तेन, वह न दीवान को बेडर टुडर ते, नवो खंड सात दीप सातहु समुद्र पार, वह न जलालुद्दीन शाह अकबर ते। 15 रहीम अब्दुल रहीम खान खाना। ये अकबर बादशाह के अभिभावक प्रसिद्ध मुगल सरदार बैरम खां खान खाना के पुत्र थे। इनका जन्म संवत 1610 में हुआ। ये संस्कृत अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान और हिंदी काव्य के पूर्ण मर्मज्ञ कवि थे। ये दानी और परोपकारी ऐसे थे कि अपने समय के कर्ण माने जाते थे। इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, कीर्ति की कामना से उसका कोई संपर्क न था। इनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। गंग कवि को इन्होंने एक बार 36 लाख रुपए दे डाले थे। अकबर के समय में ये प्रधान सेनानायक और मंत्री थे और अनेक बड़े बड़े युद्धों में भेजे गए थे। ये जहांगीर के समय तक वर्तमान रहे। लड़ाई में धोखा देने के अपराध में एक बार जहांगीर के समय में इनकी सारी जागीर जब्त हो गई और ये कैद कर लिए गए। कैद से छूटने पर इनकी आर्थिक अवस्था कुछ दिनों तक बड़ी दीन रही, पर जिस मनुष्य ने करोड़ों रुपये दान किए, जिसके यहाँ से कोई विमुख न लौटा, उसका पीछा याचकों से कैसे छूट सकता था। अपनी दरिद्रता का दुख वास्तव में इन्हें उसी समय होता था जिस समय इनके पास कोई याचक जा पहुंचता और ये उसकी यथेष्ट सहायता नहीं कर सकते थे। अपनी अवस्था के अनुभव की व्यंजना उन्होंने इस दोहे में की है। तब ही लो जीवो भलो, देवो होय न धीम, जग में रहिबो कुचिंत गति, उचित न होय रहीम। संपत्ति के समय में जो लोग सदा घेरे रहते हैं, विपद के आने पर उनमें अधिकांश किनारा खींचते हैं, इस बात का द्योतक यह दोहा है। ये रहीम दर दर फिरे, मांगी मधुकर खाही, यारो यारी छाड़ ये, अब रहीम वे नाही। कहते हैं कि इसी दिन दशा में इन्हें एक याचक ने आ घेरा। इन्होंने यह दोहा लिखकर उसे रीवा नरेश के पास भेजा। पृष्ठ संख्या 120। चित्रकूट में रमी रहे रहिमन अवध नरेश, जापर विपदा परति है सो आवत यही देश। रीवा नरेश ने उस याचक को 1,00,000 रुपए दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी से भी इनका बड़ा स्नेह था। ऐसी जनश्रुति है कि एक बार एक ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह के लिए धन न होने से घबराया हुआ गोस्वामी जी के पास आया। गोस्वामी जी ने उसे रहीम के पास भेजा और दोहे की यह पंक्ति लिखकर दे दी। सुरतीय नरतीय नागतीय, यह चाहत सब कोय। रहीम ने उस ब्राह्मण को बहुत सा द्रव्य देकर विदा किया और दोहे की दूसरी पंक्ति इस प्रकार पूरी करके दे दी। गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए। रहीम ने बड़ी बड़ी चढ़ाइयां की थी और मोगल साम्राज्य के लिए न जाने कितने प्रदेश जीते थे। इन्हें जागीर में बहुत बड़े बड़े सूबे और गढ़ मिले थे। संसार का इन्हें बड़ा गहरा अनुभव था। ऐसे अनुभव के मार्मिक पक्ष को ग्रहण करने की भावुकता इनमें अद्वितीय थी। अपने उदार और ऊंचे हृदय को संसार के वास्तविक व्यवहारों के बीच रखकर जो संवेदना इन्होंने प्राप्त की है, उसी की व्यंजना अपने दोहे में की है। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुँह पर रहते हैं। इसका कारण है जीवन की सच्ची परिस्थितियों का मार्मिक अनुभव। रहीम के दोहे वृंद और गिरधर के पद्यों के समान कोरी नीति के पद्य नहीं हैं। उनमें मार्मिकता है, उनके भीतर से एक सच्चा हृदय झांक रहा है। जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी, वही जनता का प्यारा कवि होगा। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही अपने द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। बरवे नायिका भेद में भी जो मनोहर और छलकते हुए चित्र हैं, वे भी सच्चे हैं, कल्पना के झूठे खेल नहीं हैं। उनमें भारतीय प्रेम जीवन की सच्ची झलक है। भाषा पर तुलसी का सही अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं। ये ब्रज और अवधि पश्चिमी और पूर्वी दोनों काव्य भाषाओं में समान कुशल थे। बरवे नायिका भेद बड़ी सुंदर अवधि भाषा में है। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। यद्यपि रहीम सर्वसाधारण में अपने दोहों के लिए ही प्रसिद्ध हैं, पर इन्होंने बरवे, कवित्त, सवैया, सोठा, पद सब में थोड़ी बहुत रचना की है। रहीम का देहावसान संवत 1683 में हुआ। अब तक इनके निम्नलिखित ग्रंथ ही सुने जाते थे: रहीम दोहावली या सतसई, बरवे नायिका भेद, श्रृंगार सोठा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी। पर भरतपुर के श्रीयुत पंडित माया शंकर जी याज्ञिक ने इनकी और भी रचनाओं का पता लगाया है, जैसे नगर शोभा, फुटकल बरवे, फुटकल कवित्त सवैये और रहीम का एक पूरा संग्रह रहीम रत्नावली के नाम से निकाला है। कहा जा चुका है कि ये कई भाषाओं और विद्याओं में पारंगत थे। इन्होंने फारसी का एक दीवान भी बनाया था और वाकयात बावरी का फारसी से तुर्की में वाकयात बावरी का तुर्की से फारसी में अनुवाद किया था। कुछ मिश्रित रचना भी इन्होंने की है। रहीम काव्य हिंदी संस्कृत की खिचड़ी है और खेट कौतुकम नामक ज्योतिष का ग्रंथ संस्कृत और फारसी की खिचड़ी है। कुछ संस्कृत श्लोकों की रचना भी ये कर गए हैं। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। सतसई या दोहावली से: दुर्दिन परे रहीम कह, भूलत सब पहचानी, सोच नहीं बित हानि को, जौना होए हित हानि। कौ रहीम जनि काहु के, द्वार गए पछिताए, संपत्ति के सब जात हैं, विपत्ति सबै ले जाए। ज्यों रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए। पृष्ठ संख्या 121, बारे उजियारी लगे बड़े अंधेरो होए, सर सुखे पंछी उड़े और सरन समाही, दीन मीन बिन पंख के कहु रहीम कह जाही, मांगत मुकरिन को गयो के ही न त्यागियो साथ, मांगत आगे सुख लयो ते रहीम रघुनाथ, रहीमन वे नर मर गए मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही, रहीमन रहिला की भली जो परसे चित लाए, परसत मन मैलो करे सो मैदा जरी जाए। बरवे नायिका भेद से भोरही बोली कोयलिया बढ़वती ताप, घरी एक भरी अलिया रहू चुपचाप, बाहर लेके दियवा बारन जाई, सासु ननद पर पहुँचत देती बुझाई, पिय आवत अंगनैया उठिके लीन, बिहसत चतुर तिरियवा बैठक दीन, लेके सुघर खुरपिया पिय के साथ, छैबे एक छतरिया बरसत पाथ, पीतम एक सुमिरनिया मोहि देई जाहू, जही जपि तोर बिरहवा करब निबाहू। मदनाष्टक से कलित ललित माला वा जवाहिर जड़ा था, चपल चखन वाला चांदनी में खड़ा था, कटितट बिच मेला पीलत सेला नवेला, अली बन अलबेला यार मेरा अकेला। नगर शोभा से उत्तम जाति है ब्राह्मणी, देखत चित्त लुभाए, परम पाप पल में हरत परसत वाके पाए, रूप रंग रतिराज में छतरानी इतरात, मानव रचि बिरंचि पचि कुसुम कनक में सान, बनी आई नी बनी आई के बैठी रूप की हाट, पेम पेक तन हेर के गरुवे टारती बाट, गर्भ तराजू करती चख मोह भौह मोरी मुस्काती, डांडी मारती विरह की चित चिंता घटी जाती। फुटकल कविता आदि से बड़न सुजान पहचान के रहीम कहा, जोपे करता रही न सुख दिन हार है, सीत हर सूरज सुनेह कियो याही हेत, ताहु पे कमल जारी डारत तुसार है, छीर निधि माही धज शंकर के शीश बस्यो, तऊ नर ना कलंक लस्य शशि में सदा रहे। पृष्ठ संख्या 122। बड़ो रिझवार या चकोर दरबार है पे, कुला निधि यार तऊ चाखत अंगार है, जाति होती सखी गोहन में मनमोहन को लखी ही ललचानो, नागरी नारी नई ब्रज की उनहू नंदलाल को रिझी वो जानो, जाति भई फिरके चितई तब भाव रहीम यह उर आनो, जो कमनैत दमानक में फिर तीर सुमारी ले जात निशानो, कमल दल नैनन की उनमानी, बिसरति नाही सखी सो मनते मंद मंद मुस्कानी, वसुधा की बस करी मधुरता सुधा पगी बतरानी, मढ़ी रहे चित उर विशाल की मुक्ता मल थहरानी, नृत्य समय पीताम्बर हो की फहर फहर फहरानी, अनुदिन श्री वृंदावन ब्रजते आवत आवन जानी, अब रहीम चितते न टरती है सकल श्याम की बानी। 16 कादिर। कादिर बख्श पिहाने जिला हरदोई के रहने वाले और सैयद इब्राहिम के शिष्य थे। इनका जन्म संवत 1635 में माना जाता है, अतः इनका कविता काल संवत 1660 के आसपास समझा जा सकता है। इनकी कोई पुस्तक तो नहीं मिलती पर फुटकल कवित्त पाए जाते हैं। कविता ये चलती भाषा में अच्छी करते थे। इनका यह कवित्त लोगों के मुँह से बहुत सुनने में आता है। गुण को न पूछे को अवगुण की बात पूछे, कहा भयो दई कली काल यो खरानो है, पोथी पुराण ज्ञान ठट्टन में डारी डेत, चुगुल चबाइन को मान ठहरानो है, कादिर कहत यासो कछु कहिबे को नहीं, जगत की रीत देखी चुप मन मानो है, खोली देखो हियो सब औरन सो भाती भाती, गुण न हिरानो गुण गाहक हिरानो है। 17 मुबारक। सैयद मुबारक अली बिलग्रामी का जन्म संवत 1640 में हुआ था, अतः इनका कविता काल संवत 1670 के पीछे मानना चाहिए। ये संस्कृत फारसी और अरबी के अच्छे पंडित और हिंदी के सहृदय कवि थे। जान पड़ता है ये केवल श्रृंगार की ही कविता करते थे। इन्होंने नायिका के अंगों का वर्णन बड़े विस्तार से किया है। कहा जाता है कि 10 अंगों को लेकर इन्होंने एक एक अंग पर 100-100 दोहे बनाए थे। इनका प्राप्त ग्रंथ अलक शतक और तिल शतक उन्हीं के अंतर्गत है। इन दोहों के अतिरिक्त इनके बहुत से कवित्व सवैये ग्रंथों में पाए जाते हैं और लोगों के मुँह से सुने जाते हैं। इनकी उत्प्रेक्षा बहुत बड़ी चढ़ी होती थी और वर्णन के उत्कर्ष के लिए कभी कभी ये बहुत दूर तक बढ़ जाते थे। कुछ नमूने देखिए। अलक शतक और तिल शतक से परी मुबारक तीय बदन अलक ओप अति होए, मानो चंद की गोद में रही निशासी सोए, चिबुक कूप में मन पर्यो छबिजल तृषा बिचारी कड़ती मुबारक ताही तिया अलक डोरी सी डारी चिबुक कूप रसरी अलक तिलसु चरस दृग बैल बारी बैस सिंगार को सीचत मनमत छैल। फुटकल से कनक बरन बाल नगन लसत भाल पृष्ठ संख्या 123 मोतिन के माल उर सोहे भली भाती हो चंदन चढ़ाए चारु चंद मुखी मोहनिसी प्राय ही अन्हाय पग धारे मुसकाती है चुनरी विचित्र श्याम सजी के मुबारक जू ढाकी नक सिख से निपट सकुचाती है चंद्र में समेटी के नखत मानो दिन को प्रणाम किए राति चली जाती है। 18 बनारसी दास ये जौनपुर के रहने वाले एक जैन जौहरी थे जो आमेर में भी रहा करते थे। इनके पिता का नाम खड्गसेन था। ये संवत 1643 में उत्पन्न हुए थे। इन्होंने संवत 1698 तक का अपना जीवन वृत्त अर्ध कथानक नामक ग्रंथ में दिया है। पुराने हिंदी साहित्य में यही एक आत्मचरित मिलता है, इससे इसका महत्व बहुत अधिक है। इस ग्रंथ से पता चलता है कि युवावस्था में इनका आचरण अच्छा न था और इन्हें कुष्ठ रोग भी हो गया था, पर पीछे ये संभल गए। ये पहले श्रृंगार रस की कविता किया करते थे, पर पीछे ज्ञान हो जाने पर इन्होंने ये सब कविताएं गोमती नदी में फेंक दी और ज्ञानोपदेश पूर्ण कविताएं करने लगे। कुछ उपदेश इनके ब्रज भाषा गद्य में भी हैं। इन्होंने जैन धर्म संबंधी अनेक पुस्तकों के सारांश हिंदी में कहे हैं। अब तक इनकी बनाई इतनी पुस्तकों का पता चलता है। बनारसी विलास, फुटकल कवित्तों का संग्रह, नाटक समय सार, कुंद कुंदाचार्य कृत ग्रंथ का सार, नाम माला, कोश, अर्ध कथानक, बनारसी पद्धति, मोक्षपदी, ध्रुव वंदना, कल्याण मंदिर भाषा, वेद निर्णय पंचाशिका, मार्गन विद्या। इनकी रचना शैली पुष्ट है और इनकी कविता दादूपंथी सुंदर दास जी की कविता से मिलती जुलती है। कुछ उदाहरण लीजिए। भोदू ते हृदय की आंखें जे सर्वे अपनी सुख संपत्ति भ्रम की संपत्ति भाखें जिन आखिन सो निरखी भेद गुण ज्ञानी ज्ञान विचारें जिन आखिन सो लखी स्वरूप मुन ध्यान धारणा धारें काया सो विचार प्रीति माया ही में हार जीत लिए हठ रीति जैसे हारी लकी लकरी चंगुल के जोर जैसे गोह गही रहे भूमि त्यों ही पय गाड़ पैन छाड़ टेक पकरी मोह की मरार सो मरम को न ठौर पावे धावे चहु ओर जो बढ़ावे जाल मकरी ऐसी दूर बुद्धि भूली झूठ के झरो के झूली फूली फिर ममता जंजीरन सुजकरी। 19 सेनापति ये अनूप शहर के रहने वाले कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम गंगाधर, पितामह का परशुराम और गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। इनका जन्मकाल संवत 1646 के आसपास माना जाता है। ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। इनके ऋतु वर्णन में प्रकृति निरीक्षण पाया जाता है। पद विन्यास भी इनका ललित है। कहीं कहीं विरामों पर अनुप्रास का निर्वाह और यमक का चमत्कार भी अच्छा है। सारांश यह कि अपने समय के ये बड़े भावुक और निपुण कवि थे। अपना परिचय उन्होंने इस प्रकार दिया है। दीक्षित परशुराम दादा हैं विदित नाम जिन कीन्हे यज्ञ जाकी विपुल बढ़ाई है गंगाधर पिता गंगाधर के समान जाके पृष्ठ संख्या 124 गंगा तीर बसती अनूप जिन पाई है महाजान मणि विद्यादान हूँ मैं चिंता मणि हीरा मणि दीक्षित ते पाई पंडिताई हैं सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी सब कवि कान दे सुनत कविताई है। इनकी गर्भोक्तियां खटकती नहीं उचित जान पड़ती हैं। अपने जीवन के पिछले काल में ये संसार से कुछ विरक्त हो चले थे। जान पड़ता है कि मुसलमानी दरबारों में भी इनका अच्छा मान रहा क्योंकि अपने विरक्ति की झोंक में इन्होंने कहा है के तो करो कोई पै करम लिखोई ताते दूसरी न होई उर सोई ठहराई आधी ते सरस बीती गई है बरस अब दुर्जन दरस बीच रस न बढ़ाइए चिंता अनुचित धरु धीरज उचित सेनापति वह सुचित रघुपति गुण गाइए चारी बर दानी तजी पाया कमलेच्छन के पाया मलेच्छन के काहे को कहाइए। शिव सिंह सरोज में लिखा है कि इन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया था। इनके भक्ति भाव से पूर्ण अनेक कवित रत्नाकर में मिलते हैं, जैसे महामोहकंदनी में, जगत जकंदनी में, दिन दुख दंदनी में, जात है बिहाय के, सुख कोन लेस है कलेस सब भांति न को, सेनापति याही ते कहत अकुलाय के, आवे मन ऐसी घर बार परिवार तजौ, डारो लोक लाज के समाज विसराय के, हरिजन पुंजनी में वृंदावन कुंजनी में, रहो बैठी कहूँ तरवर तर जाय के। यद्यपि इस कवित्व में वृंदावन का नाम आया है, पर इनके उपास्य राम ही जान पड़ते हैं, क्योंकि स्थान स्थान पर इन्होंने सियापति राम आदि नामों का ही स्मरण किया है। कवि रत्नाकर इनका सबसे पिछला ग्रंथ जान पड़ता है, क्योंकि उसकी रचना संवत 1706 में हुई थी, यथा संवत 1706 में से सियापति पाए, सेनापति कविता सजी, सज्जन सजव सहाय। इनका एक ग्रंथ काव्यकल्प द्रुम भी प्रसिद्ध है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इनकी कविता बहुत मर्म स्पर्शनी और रचना बहुत ही प्रौढ़ और प्रांजल है। जैसे एक ओर इनमें पूरी भावुकता थी, वैसे ही दूसरी ओर चमत्कार लाने की पूरी निपुणता भी। श्लेष का ऐसा साफ उदाहरण शायद ही कहीं और मिले। नाही नाही करे थोरी मांगे सब दैन कहे, मंगन को देखी पट देत बार बार है, जिनके मिलत भली प्राप्ति की घटी होती, सदा शुभ जनमन भावे निराधार है, भोगी वे रहत बिलसत अवनी के मध्य, कन कन जोरे दान पाठ परवार है, सेनापति वचन की रचना निहारी देखो, पृष्ठ संख्या 125, दाता और सूम दो कीने एक सार है। भाषा पर ऐसा अच्छा अधिकार कम कवियों का देखा जाता है। इनकी भाषा में बहुत कुछ माधुर्य ब्रज भाषा का ही है, संस्कृत पदावली पर अवलंबित नहीं। अनुप्रास और यमक की प्रचुरता होते हुए भी कहीं भद्दी कृत्रिमता नहीं आने पाई है। इनके ऋतु वर्णन के अनेक कवित्व बहुत से लोगों को कंठस्थ हैं। रामचरित संबंधी कवित्व भी बहुत ही ओजपूर्ण है। इनकी रचना के कुछ नमूने दिए जाते हैं। वाणी सौ सहित सुबरन मुह रहे जहां, सूरत बहुत भांति अर्थ समाज को, संख्या करी लीजिए अलंकार है अधिक या में, राखो मति ऊपर सरस ऐसे साज को, सुनो महाजन चोरी होती चार चरण की, ताते सेनापति कहे तजी उर लाज को, लीजियो विचार लीजियो बचाए जो चुरावे नाही को सौपी, वित्त किसी थाती में कवित्त जन के ब्याज को, वृष को तरनी तेज सहसो करनी तपे, जालनी के जाल विकराल बरसत है, तचती धरनी जग झुरत झुरनी सीरी, चाह को पकरी पंथी पंछी बिरमत है, सेनापति नेक दुपहरी ढरकत होत, धमका विषम जुन पात खरकत है, मेरे जान पौन सीरे ठौर को पकरी काहू, घरी एक बैठी कहूँ घामे बितवत है, सेनापति उनये नये जलद सावन के, चारिहु दिशान घुमरत भरे तोय कह, शोभा सरसाने न बखाने जात के हूँ भांति, आने है पहाड़ मानो काजर के ढोय कह, घन सु गगन छप्यो तिमिर सघन भयो, देखी न परत मानो रवि गयो खोय के, चारी मास भरी श्याम निशा को भरम मानी, मेरे जान याही ते रहत हरि सोय के, दूरी जदुराई सेनापति सुखदाई देखो, आई ऋतु पावस न पाई प्रेम पतिया, धीर जलधर की सुनत धुनि धर कियो, दर की सुहागिन की छोह भरी छतिया, आई सुधी बर की हिय में आनी खर की, सुमीरी प्राण प्यारी व प्रीतम की बतिया, बीती औधि आवन की लाल मन भावन की, डग भई बावन की सावन की रतिया, बाली को सपूत कपिकुल पुरहुत, रघुवीर जुक दूत भरी रूप विकराल को, युद्ध मद गाढ़ो पाव रोपी भयो ठाड़ो सेना, पति बल बाड़ो रामचंद्र भुवपाल को, पृष्ठ संख्या 126। कच्छप कहली रयो कुंडली टहली रयो, दिग्गज दहली त्रास पयो चकचाल को, पाँव के धरत अति भार के परत भयो, एक ही परत मिली सपत पताल को, रावण को वीर सेनापति रघुवीर जो की, आयो है शरण छाड़ी ताही मद अंध को, मिलत ही ताको राम कोप के करी है ओप, नाम जो ये दुर्जन दलन दीन बंध को, देखो दान वीर तानी दान एक दान ही में, दीन्हे दो दान को बखाने सत्यसंध को, लंका दसकंधर की दीनी है विभीषण को, शंका विभीषण की सो दीनी दसकंध को। सेनापति जी के भक्ति प्रेरित उद्गार भी बहुत अनूठे और चमत्कार पूर्ण है। आपने कर्म करी हों ही निभाऊंगो, तो हों ही करतार करतार तुम काहे के, वाला प्रसिद्ध कवित्व इन्हीं का है। 20 पुहकर कवि। ये प्रतापपुर जिला मैनपुरी के रहने वाले थे, पर पीछे गुजरात में सोमनाथ जी के पास भूमि गांव में रहते थे। ये जाति के कायस्थ थे और जहांगीर के समय में वर्तमान थे। कहते हैं कि जहांगीर ने किसी बात पर इन्हें आगरे में कैद कर लिया था। वहीं कारागार में इन्होंने रस रतन नामक ग्रंथ संवत 1673 में लिखा, जिस पर प्रसन्न होकर बादशाह ने इन्हें कारागार से मुक्त कर दिया। इस ग्रंथ में रंभावती और सूरसेन की प्रेम कथा कई छंदों में, जिनमें मुख्य दोहा और चौपाई है, प्रबंध काव्य की साहित्यिक पद्धति पर लिखी गई। कल्पित कथा लेकर प्रबंध काव्य रचने की प्रथा पुराने हिंदी कवियों में बहुत कम पाई जाती है। जायसी आदि सूफी शाखा के कवियों ने ही इस प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं, पर उनकी परिपाटी बिल्कुल भारतीय नहीं थी। इस दृष्टि से रस रतन को हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान देना चाहिए। इसमें संयोग और वियोग की विविध दशाओं का साहित्य की रीति पर वर्णन है। वर्णन उसी ढंग के हैं जिस ढंग के श्रृंगार के मुक्तक कवियों ने किए हैं। पूर्व राग, सखी, मंडन, नखशिख, ऋतु वर्णन आदि श्रृंगार की सब सामग्री एकत्र की गई है। कविता सरस और भाषा प्रौढ़ है। इस कवि के और ग्रंथ नहीं मिले हैं, पर प्राप्त ग्रंथ को देखने से ये एक अच्छे कवि जान पड़ते हैं। इनकी रचना की शैली दिखाने के लिए उद्धृत पद पर्याप्त होंगे। चले मैमता हस्ती झुमंत मत्ता, मनोबद्दला श्याम साथे चलंता, बनी बागरी रूप राजंत दंता, मनोवग्ध आषाढ़ पाते उदंता, लसे पीत लाले सुढ़ाल ढलके, मनोचंचला चांदी छाया छलके, चंद की उजारी प्यारी नैनन तिहारे परे, चंद की कला में दूती दूनी दरसाती है, ललित लतानी में लता सी गही सुकुमारी, मालती सी फूले जब मृदु मुस्काती है, पुहकर कहे जित देखिए विराज अतित, परम विचित्र चारुचित्र मिली जाती है, आवे मन माही तब रहे मन ही में गड़ी, नैननी बिलो के बाले नैननी समाती है। 21 सुंदर। ये ग्वालियर के ब्राह्मण थे और शाहजहां के दरबार में कविता सुनाया करते थे। इन्हें बादशाह ने पहले कविराय की और फिर महाकविराय की पदवी दी थी। इन्होंने संवत 1688 में सुंदर श्रृंगार नामक नायिका भेद का एक ग्रंथ लिखा। कवि ने रचना की तिथि इस प्रकार दी है, पृष्ठ संख्या 127। संवत 1600 बरस बीते 78 सीती, कार्तिक सुदी सतमी गुरो, रचे ग्रंथ करी प्रीति। इसके अतिरिक्त सिंहासन 32 और 12 मासा नाम की इनकी दो पुस्तकें और कही जाती हैं। यमक और अनुप्रास की ओर इनकी कुछ विशेष प्रवृत्ति जान पड़ती है। इनकी रचना शब्द चमत्कार पूर्ण है। एक उदाहरण दिया जाता है, काके गए बसन पलटी आए बसन सु, मेरो कछु बस न रसन उर लागे हो, भौहे तरछौहे कवि सुंदर सुजान सोहे, कछु अलसोहे गौहे जाके रस पागे हो, परसों में पाए होते परसों में पाए गही, परसों वे पाए निशी जाके अनुरागे हो, कौन बनिता के हो जु कौन बनिता के होसु, कौन बनिता के बनिता के संग जागे हो। 22 लाल चंद या लक्षोदय। ये मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह संवत 1685 से 1709 की माता जाम्बवती जी के प्रधान श्रावक हंसराज के भाई डूंगर सिंह के पुत्र थे। इन्होंने संवत 1700 में पद्मिनी चरित्र नामक एक प्रबंध काव्य की रचना की, जिसमें राजा रत्नसेन और पद्मिनी की कथा का राजस्थानी मिली भाषा में वर्णन है। जायसी ने कथा का जो रूप रखा है उससे इसकी कथा में बहुत जगह भेद है। जैसे जायसी ने हीरामन तोते के द्वारा पद्मिनी का वर्णन सुनकर रत्नसेन का मोहित होना लिखा है, पर भाटो द्वारा एक बारगी घर से निकल पड़ने का कारण इसमें यह बताया गया है कि पटरानी प्रभावती ने राजा के सामने जो भोजन रखा वह उसे पसंद न आया। इस पर रानी ने चिढ़कर कहा कि यदि मेरा भोजन अच्छा नहीं लगता तो कोई पद्मिनी ब्याह लाओ। तब तड़की बोली तिसे जी राखी मन धरी रोस, नारी आणो कान बीजी दो मत झूठो दोस, हमें कलेवी जीड़ा नहीं जी किसों के रिजे बाद, पद्मणी का परनो न बीजी जिमी भोजन होए स्वाद। इस पर रत्न सिंह यह कहकर उठ खड़ा हुआ, राणो तोहू रतन सिंह परनो पद्मिनी नारी। राजा समुद्र तट पर जा पहुंचा, जहां से औघर नाथ सिद्ध ने अपने योग बल से उसे सिंघल द्वीप पहुंचा दिया। वहां राजा की बहन पद्मिनी के स्वयंवर की मुनादी हो रही थी। सिंघल द्वीप नो राजियो रे, सिंघल सिंह समान रे, तसु बहन छे पद्मिनी रे, रूपे रंभ समान रे, जोबन लहरियां जाए छे रे, ते परनु भरतार रे, परतज्ञा जे पूर्वे रे, तासु बरे बरमाल रे। राजा अपना पराक्रम दिखाकर पद्मिनी को प्राप्त करता है। इसी प्रकार जायसी के वृत्त से और भी कई बातों में भेद है। इस चरित्र की रचना गीति काव्य के रूप में समझनी चाहिए। सूफी रचनाओं के अतिरिक्त भक्ति काल के अन्य आख्यान काव्य। आश्रयदाता राजाओं के चरित काव्य तथा ऐतिहासिक या पौराणिक आख्यान काव्य लिखने की जैसी परंपरा हिंदुओं में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी, वैसी पद्यबद्ध कल्पित कहानियां लिखने की नहीं थी। ऐसी कहानियां मिलती हैं पर बहुत कम। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रसंगों या वृत्तों की कल्पना की प्रवृत्ति कम थी। ऐसी कल्पना किसी ऐतिहासिक या पौराणिक पुरुष या घटना का कुछ कभी कभी पृष्ठ संख्या 128 अत्यंत अल्प सहारा लेकर खड़ी की जाती थी। कहीं कहीं तो केवल कुछ नाम ही ऐतिहासिक क्या पौराणिक रहते थे, वृत्त सारा कल्पित रहता था, जैसे ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा। आत्मकथा का विकास भी नहीं पाया जाता, केवल जैन कवि बनारसी दास का अर्ध कथानक मिलता है। नीचे मुख्य आख्यान काव्यों का उल्लेख किया जाता है। ऐतिहासिक पौराणिक, पहला रामचरितमानस तुलसी, दूसरा हरिचरित्र लालच दास, तीसरा रुक्मिणी मंगल नरहरि, चौथा रुक्मिणी मंगल नंद दास, पांचवा सुदामा चरित्र नरोत्तम दास, छठा रामचंद्रिका केशवदास, सातवां वीर सिंह देव चरित केशवदास, आठवां वेली कृष्ण रुक्मणीरी जोधपुर के राठौर राजा पृथ्वीराज। कल्पित, पहला ढोला मारू रा दुहा प्राचीन, दूसरा लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा दामो कवि, तीसरा सत्यवती कथा ईश्वरदास, चौथा माधवा नल काम कंदला आलम, पांचवा रस रतन पोहकर कवि, छठा पद्मिनी चरित्र लालचंद, सातवा कनक मंजरी काशीराम। आत्मकथा, पहला अर्ध कथानक बनारसी दास। ऊपर दी हुई सूची में ढोला मारू रा दुहा और बेली कृष्ण रुक्मणीरी राजस्थानी भाषा में हैं। ढोला मारू की प्रेम कथा राजपुताने में बहुत प्रचलित है। दोहे बहुत पुराने हैं, यह बात उनकी भाषा से पाई जाती है। बहुत दिनों तक मुखाग्रही रहने के कारण बहुत से दोहे लुप्त हो गए थे, जिससे कथा की श्रृंखला बीच बीच में खंडित हो गई थी। इसी से संवत 1618 के लगभग जैन कवि कुशल लाभ ने बीच बीच में चौपाइयां रचकर जोड़ दी। जो दोहों की प्राचीनता का अनुमान इस बात से हो सकता है कि कबीर की साखियों में ढोला मारू के बहुत से दोहे ज्यों के त्यों मिलते हैं। बेली कृष्ण रुक्मणीरी जोधपुर के राठौर राजवंशीय स्वदेशाभिमानी कवि पृथ्वीराज की रचना है, जिनका महाराणा प्रताप को शोभ से भरा पत्र लिखना इतिहास प्रसिद्ध है। रचना प्रौढ़ भी है और मार्मिक भी। इसमें श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की कथा है। पद्मिनी चरित की भाषा भी राजस्थानी मिली है।